आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। दिल्ली की वो हसीना जो रंग पहनती थी, कौन थी दिल्ली की ये हसीनाएं जिनके झलक पाने के लिए सरेआम लुट गए दीवाने। दिल्ली के रंग दिखाते लेख के पहले भाग में जानिए दिल्ली की हसीनाओं के बारे में। ललित वर्मा। हाथों में जाम, आंखों में नशा और कलाई पर चमेली के गजरे बांधकर मखमली गलीचों पर वाह वाह करते कद्रदानों से भरी महफिल, आलिशान झूमरों से बिखरती रोशनी और मादक इत्र की खुशबुओं के बीच कानों में घुलते संगीत और उन पर थिरकते घुंघरुओं की झनकार, इस मदमस्त माहौल का नशा कई गुना कर देती थीं वे सुंदरियां जिनका नाच देखने दूर दूर से दीवाने दिल्ली पहुंचते थे। इन हसीनाओं का दिल्ली के दिलों पर राज था। ये किस्सा है 300 साल पुरानी दिल्ली का, किस्सा मुगलिया दौर की उस रंगीन राजधानी का जिसकी शामें शराब और शबाब में ऐसी घुल जाती थीं कि किसी को कोई सुध नहीं रहती थी। सूरज ढलने के बाद सजने वाली इन महफिलों में दिन निकलने तक रंग बिखरे रहते थे। ऐसी शामों की शान बन चुकी थी अब बेगम, जिसका मुजरा कोई अगर एक बार देख लेता था तो किसी और मुजरे में फिर उसका दिल नहीं लग सकता था। और हो भी क्यों ना, अब बेगम रंग पहनती थी, कपड़े नहीं। ये उस वक्त की बात है जब दिल्ली पर राज था मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 तक दिल्ली पर राज किया और 45 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। 1737 से 1741 के दरमियान दक्कन के निजाम आसफ जहां प्रथम के दरबारी दरगाह कुली खान दिल्ली आकर ठहरे। उन्होंने जिस दिल्ली का दीदार किया उसके दो मिजाज थे, एक था रूहानी और दूसरा इसके उलट भोग और विलास का। दरगाह कुली खान ने जो कुछ देखा उसकी बहुत महीन जानकारियां अपनी डायरी में नोट करते रहे। इसी से 1989 में एक किताब निकली, नाम है मुरक्काए दिल्ली। चंद्रशेखर और क्षमा मित्र चेनॉय ने इसे पर्शियन से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। किताब बताती है कि दिल्ली तब इतनी रंगीन थी कि नादिर शाह के भयंकर हमलों के बाद भी उसके रंग फीके नहीं पड़े। गली कूचों में सजने वाली नशीली महफिलों में रसियों की भीड़ कम नहीं हुई। नर्तकियों, गायिकाओं और तवायफों के लिए दिल्ली का दिल धड़कता रहा। इन्हीं में से एक थी अब बेगम, जिसे देखने भर के लिए दिल्ली वाले बेताब रहते थे। उसकी अदा बाकियों से जुदा थी। वो शायद अकेली तवायफ थी जो महफिलों में बिना कपड़ों के आकर भी अपने कद्रदानों को नवाजती थी। वो अक्सर अपनी टांगों को इस अंदाज में पेंट कर लेती थी कि देखने वाले को लगता था कि यही उसकी पायजामी है। नायाब नक्काशी होती थी टांगों पर, पैंचों की जगह रूमी के कपड़ों जैसे फूल और पत्तियां। देखने वाले इस खूबसूरती को बस निहारते रह जाते। ये कलाकारी इतनी नायाब होती थी कि जब तक कोई खुलासा न करे कोई बता नहीं सकता था कि अद बेगम ने टांगे पेंट की हुई हैं या कपड़े पहन रखे हैं। उसकी इसी खासियत की वजह से अपने जमाने में वो दिल्ली की सबसे मशहूर औरत रही। उसका रहन सहन, शान शौकत और रुतबा ऐसा था कि कोई आमजन तो उसके करीब जाने तक की सोच नहीं सकता था। दिल्ली की रंगीनियां कैसी थीं ये समझने के लिए दिल्ली दरबार के आला ओहदेदार आजम खान का जिक्र भी जरूरी है। इससे पता चलेगा कि दिल्ली के मिजाज पर तब की सत्ता का कितना असर था। आजम खान कला का पारखी लेकिन अय्याश किस्म का शख्स था, राजा का करीबी और खाने जहां बहादुर आलमगीर का भतीजा। जब भी उसे पता चलता कि कोई कमसिन लड़की या कोई चिकना लड़का बिकने के लिए उपलब्ध है वो उसे खरीद लेता था। ये बाद में उसके हरम या उसकी महफिलों की रौनक बनकर रहते थे। और भी कई बड़े ओहदेदार गायकी, संगीत और मुजरों की महफिल के शौकीन थे और इनकी वजह से पूरे शहर की तबीयत ऐसी हो चुकी थी कि हर शाम लोग नशीली महफिलों में खो जाते थे। नुशूर वाहिदी कहते हैं, शौक था शबाब का, हुस्न पर नजर गई, लुट के तब खबर हुई जिंदगी किधर गई। ये बात नूर बाई और उसके जलवों पर मुफीद बैठती है। नूर भी एक तवायफ थी जिसकी एक झलक की कीमत चुकाना किसी के लिए सरेआम लुट जाने जैसा ही था। उसके हुस्न का नूर ऐसा था कि न जाने कितने लोग उसके करीब जाने के लिए जानते बूझते कंगाल हो गए। उसके चेहरे से पर्दा हटाने भर के लिए अपने खून पसीने की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लुटा दी। दिल्ली की रंगीन मिजाजी का फायदा नूर बाई जैसी हसीनाओं को भरपूर मिला। नूर बला की खूबसूरत डोमनी थी। डोमनी कहते थे उस नाचने वाली को जो हिंदुस्तानी में गाती थी। डोमनियों के गीत पर्शियन नर्तकियों के गीत से ज्यादा पसंद किए जाते थे। गाने के साथ साथ ये नाचती थीं और इनकी अदाएं महफिलें लूट लेती थीं। आगे चलकर इन्हीं को तवायफ कहा जाने लगा। नूर बाई इतनी खूबसूरत थी कि सूरज ढलते ही शहर भर के अमीरों के सजे धजे हाथियों से नूर की हवेली वाली गलियां अट जाया करती थीं। उसे मिलने या उसे देखने तक के लिए अमीरी पहली शर्त थी। कीमती तोहफे देकर पहले रईस उसे मिलने के लिए मनाते थे और फिर उसकी एक झलक देखने भर के लिए हीरे जवाहरात लुटा देते थे। रईसों तक तो ठीक था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको नूर के करीब आने की ऐसी तलब थी कि अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा कर भी वे इसके लिए तैयार थे। ऐसे न जाने कितने ही तलबगार इस चक्कर में कंगालों की कतार में खड़े हो गए। नूर को अगर अपने यहां बुलाना हो तो उसके लिए कीमती तोहफे भेजे जाते। खुश हो जाती तो वो हाथी पर सवार होकर उसके यहां जाती। वहां मुंह दिखाई की रस्म में बेशकीमती आभूषण देने पड़ते और फिर विदाई की रस्म भी इतनी ही महंगी होती। नूर अदब के मामले में बहुत पक्की थी। महफिलों में उसका बोलने का अंदाज और तौर तरीके इतने सधे हुए थे कि अदब के उस्ताद भी उससे सीखते थे। नूर के हुस्न का चर्चा जब हिंदुस्तान को लूटकर दिल्ली पर काबिज हो चुके नादिर शाह तक पहुंचा तो उसकी नसों में खून की रवानगी तेज हो गई। वो नूर से मिला और उस पर ऐसा फिदा हुआ कि उसके गीतों की कीमत 4500 रुपए तक चुकाने लगा। वो उसे अपने साथ पर्शिया ले जाने पर अड़ गया, लेकिन नूर हिंदुस्तान छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। नादिर शाह से पीछा छुड़ाने में उसे बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसके इनकार का अंदाज भी नूरानी निकला। उसने अपना इनकार नादिर शाह तक एक गजल के रूप में पहुंचाया। उसकी इस अदा के कायल नादिर शाह ने आखिर उसे अपने चंगुल से आजाद कर दिया। किताब के लेखक तक ने नूर से एक बार मिलने को सौभाग्य की तरह अपनी डायरी में दर्ज किया। चमनी भी ऐसी ही अदाकारा थी, लेकिन जवानी की दहलीज पार कर लेने के कारण लोग उसके हुस्न के बजाय उसकी गायकी की महारत पर फिदा थे। चमनी सम्राट मोहम्मद शाह तक पहुंच रखती थी, इसलिए उसकी महफिलों में शामिल होना भी ऐरे गैरों की बस की बात नहीं थी। वो गायकी में ऐसी गुणी थी कि दरबार के बड़े बड़े कलाकार भी उसके सामने पानी भरते थे। ताराना गाते वक्त उसकी तीखी आवाज कटार की तरह दिल को भेद देती थी। दरगाह कुली खान एक महफिल का जिक्र करते हैं जिसमें वो खुद मौजूद थे और वो दिन निकलने तक चली थी। 12 साल की सुल्ताना की महफिलों की बात अलग थी। उम्र नाजुक, लेकिन शोक अदाएं उसके डांस को मादक बना देती थीं। इतनी कम उम्र में कोई उससे इतनी उम्मीद नहीं कर सकता था जितनी खूबियां उसे हासिल थीं। वो डांस के मामले में मशहूर अदाकाराओं को पीछे बिठाती थी। लेखक कहता है कि जब खास लोग उसकी महफिलें सजाते थे तो उनमें हर ख्वाहिश पूरी होती थी। इस वक्त तक चकमक दाहनी का हुस्न ढल चुका था, लेकिन उसकी आवाज के लोग अब भी दीवाने थे। जब उसकी शोहरत का दौर था तो उसके एक एक ठुमके पर लोग उसके पैरों में सोने के सिक्के बिखेर देते थे। उसके साथ एक रात बिताने की हसरत के बदले मुंहमांगी कीमत देते थे। वो मोहम्मद शाह के बेहद करीब थी और वो भी उसके हुस्न का तलबगार था। उसी ने इस हुस्न परी को नाम दिया था चकमक। लेकिन कहते हैं ना कि कला के साथ हुस्न हो तो ही तवायफों की कद्र होती है। ढलती उम्र ने चकमक के चाहने वालों पर ऐसा ही असर डाला था। जीनत का मिजाज इन सबसे अलग था। उसका तराशा बदन उसकी गायकी की कशिश में इजाफा करता था। लोग उसके रागों और सुरों की तरफ खींचे चले आते थे, लेकिन उसके तौर तरीके हटकर थे। उसकी रातें षड्यंत्रकारी किस्म के घुन्ने लोगों के साथ बीतती थीं, तो दिन बुद्धिजीवी किस्म के लोगों के बीच। अपने दीवानों को वो अपने साथ वक्त बिताने का मौका बहुत आसानी से दे देती थी। लंपट किस्म के लोग उसके घर के इर्द गिर्द मधुमक्खी के छत्ते की तरह मंडराते रहते थे। उसके बारे में लेखक लिखता है, जाम की तरह वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती थी। लेकिन रहमान बाई किसी और मिट्टी की बनी थी। उसका गहरा रंग किसी मूर्ति की तरह उसकी शख्सियत को दिलकश बनाता था। वो गायकी में अपने समकक्षों में बहुत मानी जाती थी। हिरनी सी चाल और बला की अदाओं के साथ वो कब महफिल लूट लेती थी किसी को आभास तक नहीं होता था। हालांकि एक बात का वो बड़ा ख्याल रखती थी कि उत्तेजित होकर उसकी महफिल का कोई मेहमान उसे बाहों में न भरने पाए। कहते हैं कि महफिलों के शान होने के बावजूद वो वर्जिन थी और कोई उसके हुस्न के इतना करीब नहीं जा पाया था। इन तवायफों के बारे में बताते हुए दरगाह कुली खान ने दिल्ली के उस वक्त के सामाजिक ताने बाने की तस्वीर शानदार तरीके से सबके सामने रखी है। वो बताते हैं कि मुजरों के दीवाने केवल हुस्न के दीवाने नहीं, कला और संगीत के दीवाने भी थे। लेकिन साथ ही साथ रंगीन मिजाजी की ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जो शायद मुगलों के पतन के उस दौर के बाद कभी दिल्ली में नहीं दिखी। मुजरों और महफिलों की इस कशिश को फिर क्लासिक बॉलीवुड फिल्मों में ही बुनाया गया। पहले भाग में आपने हसीनाओं के बारे में जाना, इसके दूसरे भाग में जानिए इतनी उमंग कहां से लाती है दिल्ली, जिसे देखकर मुसाफिर भी हैरान रह जाए।
सिर्फ यही है देश और दुनिया की हर जरूरी नॉलेज, दिलचस्प जानकारियां और सार्थक मनोरंजन। सुने या पढ़ें और रहें दूसरों से 2 कदम आगे हर रोज। गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नवभारतगोल्ड.com पर।